इसीलिए अब आगे उम्मते मुस्लिमा को एक खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है पूरी इंसानियत को साथ लेकर, या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम वअंज़लना अलैकुम नूरन मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची है और हमने तुम्हारी जानिब वाज़े और साफ नूर उतार दिया है। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वन करीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और इन्हें अपनी तरफ की राह रास्त दिखा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुरहान थे, दलील थे, और आपने आपके जरिए कुरान का नूर अता फरमा दिया हम सबको। किस चीज़ के साथ? कि हम अपने आप को अल्लाह ताला के इस दीन के साथ जोड़ते हुए किस चीज़ पे लेके चले कि इस पे अमल करें। आज बहुत सारे लोगों ने बहसें छेड़ दी, अल्लाह के नबी नूर थे कि बशर थे? आप इस कुरान को तो देखिए, ये कितना बड़ा नूर है। तो आपने, मैंने इंशाल्लाह इस कुरान पे अमल करना है। अब सूरत की आखिरी आयत, सूरत निसा के शुरू में क्या बातें आई थी विरासत की, यूसीकुम अल्लाह फी इलादिकुम, उधर भी बात हुई। अब इस आखिर के हिस्से में दोबारा कुछ ऐसी ही बातें, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम अल्लाह फिल कलाला, आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इसके छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा। अगर इसके औलाद ना हो, बस अगर दो बहनें हों, अगर बहनें दो हों तो इन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल दो औरतों के। और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ है। क्यों अल्लाह ताला इतना अहमियत देते हैं इन इश्यूज को? क्योंकि हमारे अमूमी मामलात में बिगाड़ कब आता है? जब लेन देन की बात होती है। तो तदब्बुर और अमल इन आयात पे देखिएगा। पहली बात यह है कि चूंकि अंबिया कराम के किस्से हम पढ़ रहे हैं, कौमों ने उनके साथ बाद में क्या कुछ किया, तो उलुल अजम अंबिया के किस्से पढ़िए और दूसरों को पढ़ाएं। पांच अंबिया कराम के नाम इंशाल्लाह कुरान में आगे जाके आएंगे तो बताऊंगी, जिनमें से एक हजरत ईसा थे, जिनकी कौम ने उनके साथ आज क्या कर दिया। आते देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा लोग जिसको मानते हैं वो ईसाइत है, लेकिन गलूफ की वजह से गलत दीन पे है। अगर वो सही दीन पे होते तो मुसलमान होते, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम उनको रसूल मानोगे। दूसरी बात है, दूसरों को खैर पर इनाम की खुशखबरी और शर के अंजाम से बचाइए, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि जन्नत में जाने वालों की खूबी क्या होगी, कि वो बुशरा खुशखबरियां देने वाले और इसी तरह नज़ीर डराने वाले भी होंगे। और हमारे अपने प्यारे नबी ने यही काम किया। दोनों चीज़ों के बीच में ईमान है, अल ईमान बैन अल खौफ व रजा। आप जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो हमेशा उनको दोनों रुख दिखाया करें दीन के, बहुत सख्ती भी ना करें, बहुत नरमी भी ना करें, बहुत गुस्सा भी ना करें और बहुत ढीला भी ना छोड़ें। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ना करें और सिर्फ बुरी बुरी बातें भी ना करें, एक बैलेंस रवैया अख्तियार करें। फिर दीन में गलूफ से और हर तरह की बुराई से पनाह मांगनी है। कुरान की रहनुमाई, अल्लाह ताला ने रसूल और किताबें नाजिल फरमा कर हुज्जत कायम कर दी है। अब जो नहीं मानेगा ये बात उसके खिलाफ खुद पड़ेगी। अक्सरियत की पैरवी नहीं बल्कि सही इल्म की रोशनी में राह हिदायत पर चलना है। आज के दौर का एक ये भी डलमा है, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग आए थे, कितने आते हैं, कितनों ने, भाई कितनों से क्या लगता है? आप कभी किसी का चैनल खोलकर अगर देखें, अगर आप मेन विंडो पे जाइए ना किसी भी चैनल की, यूट्यूब की, तो उन्होंने टॉप मोस्ट जिसको लोग मिलियंस में जिनको फॉलो करते हैं ना उनके ऊपर दिए होते हैं, वो खुद एडवर्टाइज करते हैं। अब यकीन करें कि जो दुनिया में शर फैल रहा है ना, सबसे ज्यादा उनके ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि शैतानी काम ज्यादा है। आप मेरी बात अगर वेरीफाई करना चाहें ना, सिर्फ youtube.com लिखिए और जो विंडो खुलेगी ना वो उनको एडवर्टाइज करते हैं, जिधर 6 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 32 मिलियन, 50 मिलियन, देखिए उसमें कोई एक कुरान का ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, वो उनकी चीज़ है। तो अब क्या वो सारे ठीक हो गए? तो मेजोरिटी इज नॉट अथॉर, थोड़े अच्छे, ज्यादा शर अंगेजों से, ज्यादा खराबियां वाले, गलत चीज ज्यादा हो। आपके पास शरबत है, आप उसमें थोड़ा सा शरबत डालकर पानी डालकर एक गिलास बना लें, आप उसमें 6 चम्मच चीनी डाल के जग बनाएंगे, क्या फायदा होगा? तो हमेशा प्योरिटी पे रहिए। और दूसरी बात क्या है, कुरान पाक से जो रहनुमाई की हमें मिलती है कि बगैर इल्म के बात नहीं करनी चाहिए, तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करें। आपको अल्लाह के नबी का किरदार सुनते हुए फील हो रहा है, कितने आजिज़ थे वो, क्या कहते हैं, हमारा तो पारा ही चढ़ा रहे, हर वक्त घर में मेरा मूड क्यों खराब रहता है? अगर आपका रहता है तो खुद से पूछिए। मुझे नहीं कहा, मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं सुनते, मियाँ नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, सास अम्मा ने मुझे ये कह दिया, बहू ये कह गई, मैं। आपने आपको 10 दफा दिन में जाके के तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। और वो अबू हुरैरा का जुमला याद रखें कि सारी दुनिया को हक अबू हुरैरा को बुरा कहे, अगर अबू हुरैरा इन 3 में से किसी मुकाम पर रोक लिया गया, पुलसरात से रोक लिया गया, ना मैं माल बाएं में मिला या मौत पूरी चीज पे आ गई, और अगर मैं इन 3 जगहों से बच गया, सारी दुनिया मुझे बुरा के भला के मेरी बला से, आई डोंट केयर। और हम सारी जिंदगी लोगों के लिए अपनी जिंदगियां खराब कर देते हैं। आगे गौर व फिक्र की चंद बातें, रसूल और किताबें आने के बाद अब तमाम उजर खत्म हो चुके हैं, अब हमारा काम है इन किताबों से फायदा उठाए। अपने आप को अक्लमंद समझ कर दीन और शरीयत की हदों को पामाल नहीं करना, दूसरों को अल्लाह तला के रास्ते से रोकने वाले अल्लाह तला के अजाब के मुस्तहिक होंगे, तकबर की वजह से हक पर ईमान न लाने वाले अल्लाह तला की रहमत से निकल जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत से पैगाम पर सूरत निसा पूरी हुई, आगे सूरत मायदा है, कुछ चीज़ें पारे के शुरू में बता चुकी हूँ। ये वो सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ है, और हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी कि इस सूरत के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई, यानी इसके हुक्मों को मनसूख नहीं किया गया। और इसी तरह से इस सूरत में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से शरीयत का खूबसूरत रंग दिखेगा। शरीयत क्या चाहती, कानून साजी क्या है, एक मुस्लिम रियासत में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं, यानी जब भी कहीं मुस्लिम स्टेट बनेगी तो वहाँ जो सूरत नुमाइंदा है इसको समझा भी जाएगा, इसके ऊपर गौर व फिक्र भी किया जाएगा। और अगली बात इसमें नोट कर लीजिए कि इसमें तकवा का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आता है, आप इनमें से जो चीज़ जल्दी में ज़रा फील कर सके उसको ज़रूर फील कीजिएगा, और नोट कीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के दौरान क्या मैं वाकई साथ ले रही हूँ। फिर इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर इसका हिस्सा अहकाम और कवानीन पे है, तज़कीर और नसीहत भी है, हज के मनासिक है, वुजू है, गुसल है, तयम्मुम है, खाने पीने की चीज़ों के हलाल और हराम होने की क्या कयूद है। फिर इसी सूरत में अहले किताब की खवातीन से निकाह की हुरमत और किल्लत दोनों की बात है, जुआ और शराब की हुरमत है, कानून शहादत की इसमें तफसीलात हैं, कसम तोड़ने का कफारा है, वो 7वें पारे में आएगा जहाँ अगला पारा शुरू होगा। फिर इसी तरह अल्लाह तला के रास्ते में निकलने वालों को तंग करना, हजरत मूसा का किस्सा, हजरत आदम के बेटों का किस्सा, चोर का हाथ काटने की सजा का जिक्र इसमें है, कसास का जिक्र इसमें है, कुरान पिछली शरीयतों की हिफाजत करता है ये तस्करा इसमें है, प्लस इसमें जो डकैती की सजा भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्लाह का दीन छोड़ता है तो वो शौक से छोड़ जाए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ले आएगा कि जो बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला के इस दीन को लेकर चलने वाले होंगे। आइए अब ज़रा आप भी नोट कीजिएगा अगर मुमकिन हो आपके लिए तो, इसमें से आपने लफ्ज़ तकवा को हाईलाइट करना है अगर आप कर सकें, नहीं कर सकेंगे तो भी कोई बात नहीं है, और साथ साथ ये दुआ कीजिए अल्लाह शरीयत को नाफिज करा दे। और शरीयत एक दिन में नहीं नाफिज होती, कुरान समझ आ जाता है, लोग कुरान के मुताबिक अमल करने वाले बन जाते हैं, अल्लाह की बात उनको दुनिया व माफीहा से प्यारी हो जाती है, फिर उसके बाद सब कुछ आसान होता है। तो इस बारे में सूरत मायदा की 82 आयात है, मायदा दस्तरखान को कहते हैं। सूरत की आखिरी आयतों में हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि एक मुतालबा था बनी इसराइल का जो, तो उसके ऊपर फिर ये मायदा नाम के खान के उतरने की बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर महिल्लिस्सैदि वअन्तुम हुरम। ऐ ईमान वालो, अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी छुपाए हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत अहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना, यकीनन अल्लाह तआला जो चाहे हुक्म करता है। एक मोमिन की ज़िंदगी पाबंद ज़िंदगी होती है, शरीयत पाबंदियाँ लगाती है, उसको हक है, हर मुल्क के कवानीन होते हैं और वो उसको मनवाता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको मुझे दुनिया में सब कुछ मुफ्त में दे रहा है और कोई रूल्स भी ना हो, कोई रेगुलेशंस भी ना हो, लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मिले सब कुछ लेकिन मुफ्त में मिले, हमें कुछ ना करना पड़े। आपकी मेरी ज़िंदगी अगर शुतर बेमुहार की ज़िंदगी होगी, जो चाहा खा लिया, जिधर चाहा मुंह मार लिया, जिसकी बीवी, जिसका शौहर, और ओपन मैरिजेज और फलां फलां और अजीबो गरीब कहानियां करती जाएं, तो दुनिया अखाड़ा बन जाए जो बनी हुई है इस वक्त। वैसे के वो मुल्क जिधर सिर्फ यही बात है कि सिर्फ ख्वाहिश को मानो और दुनिया में मजहब की बात ना करो, तो वहां जाकर देखिए जानवरों की सतह पे जिंदगी है, हैप्पी आवर के नाम पर क्या कुछ गंदगियां नहीं होती। तो आज इस दुनिया में आप और मैं आजाद नहीं है, अल्लाह का बंदा या का नाबुदो या का नस्ताइन कहकर बने और सारी जिंदगी अहद की रस्सी में बंधे रहेंगे। और याद रखिए ये अहद बंदों के साथ हो या अल्लाह के साथ, दोनों में पाबंदियां हैं। आप मैं उस जानवर की तरह से कि जिसके गले में एक पटा डालकर 6-8 फुट की रस्सी छोड़ दी जाए, बस इतनी हद है हमारी। उस 6-8 फुट की हदूद के अंदर रहेंगे तो इंजॉय करेंगे, उस हद से पाँव बाहर करेंगे तो गले में फंदा फंसेगा। आज उन्हीं लोगों की जिंदगियां परेशान है जो शरीयत को एक पटा समझकर एक फंदा समझकर उतार फेंकना चाहते हैं। तो अपने लिए अमल की बात लीजिए कि अल्लाह जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, लेकिन अब इसके बाद जो वक्त मेरी जिंदगी का आगे आएगा, मैं अपने इस 5-6 फुट के वजूद पे शरीयत को नाफिज करूंगी। इसीलिए आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरिल हराम, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला के शायर की बेहरमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले जानवरों और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना इन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब ताला के फजल और इसकी रजा जोई की नीयत से जा रहे हों। मुराद क्या है, हज और उमरे की नीयत करके एहराम बांधकर जो लोग जा रहे होते हैं उनको, हाँ जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ, नेकी और परहेजकारी में एक दूसरे की मदद करो। ये नोट कीजिएगा, ताउन अलल बिर्री व तकवा वला ताउन अलल इस्मी वल उदवान व तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। नेकी और परहेजकारी में एक दूसरे की मदद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज्यादती में मदद ना करो, और अल्लाह तला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तला सख्त सजा देने वाला है। पहले तो कही अल्हम्दुलिल्लाह, आयत 2 पे रुक पूरा हुआ, बहुत ही अनरेस्ट रुकू था और रुक भी था। दूसरी बात ये है कि अल्लाह तला ने इधर नेकियों को फैलाने और बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने हमें किन चीज़ों की पाबंदी दी है। अब सिर्फ एक आयत के अंदर आप देखेंगे कि इस्लाम में जो हराम चीज़ें हैं ना, उनका एक खुलासा है। कैसे, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुट जाने से मरा हो और जो किसी जर्ब से मर गया हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो और जो किसी के सींग मारने से मरा हो और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन इसे तुम ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़िबा किया गया हो और ये भी कि कुर्रे के तीरों के जरिए से फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए, खबरदार तुम इनसे न डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए बशर्ते क्या किसी गुनाह की तरफ इसका मेलान न हो, तो यकीनन अल्लाह ताला मुआफ करने वाला और बहुत मेहरबान है। आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। कितनी खूबसूरत आयत है, एंड पे इस पे बात करेंगे कि अल्लाह ने जितना प्यारा दीन आपको मुझे दिया, अगर हम इस दीन पे राजी रहते और इसके अंदर कोई कमी बेशी ना करते तो आज हकीकत में हम सब बहुत खुशहाल जिंदगियां गुजारते। इस एक आयत पे हसद किया था कि अगर यह आयत हमारे पास होती तो हम खुशियां मनाते। नबी सल्लम पर यह आयत हुज्जतुल विदा के मौके पे नाजिल हो रही थी, और आज तक ये दीन ऐसे ही साफ सुथरा कामिल है जैसे शुरू हुआ था। कोई चीज जब बन रही होती है ना, उसमें वुस्सत की गुंजाइश होती है। ये जब जगह बन रही थी, ये दीवार निकाल देते, वो कर देते, कुछ भी कर सकते थे। आज इस बने हुए घर में अगर हम कुछ भी करेंगे, इस जगह पे करेंगे, तो वो एक किस्म का भद्दा ही होगा, वो एक किस्म की उसमें करेक्शन स्लिप लगाने वाली बात है। इसी आयत से बिदात का रद्द है, दीन में कोई नई चीज इजाफा नहीं कर सकते, गलूब नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते, यही असल में सूरत मायदा का पैगाम है कि तुम अल्लाह के दिए हुए दीन पे राजी हो जाओ और जो तुम्हें कहा है कि उसको मानो करो उसी को तुम करोगे, और जो तुम्हें नहीं कहा उससे अपने आप को पीछे कर दो। इसके बाद कुछ चीज़ें हलाल और हराम की हैं। यसलून का माज ओहिल्लहुम, आपसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, तो तुम इससे खा लो और इस पर अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। इसको हाईलाइट कर लें, इन अल्लाह सरीउल हिसाब। अल्यौम अहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गईं, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा इनके लिए हलाल है, और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए इनकी पाक दाम औरतें भी हलाल हैं। इस आयत का नंबर चाहें तो हाईलाइट कर लीजिए, किताबी औरत से निकाह की हिल्लत और उसकी शरायतें इसमें। जबकि तुम इनके मेहर अदा करो इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि लानिया जिना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरीन ने ईमान के आमाल जाया और अकारत हैं, और आखरत में वो हारने वालों में से हैं। सिर्फ 5 आयतें हमने अभी तक पढ़ी हैं सूरत मायदा की, ऐसे लग रहा है क्या दी शरीयत पढ़ ली। आइए ज़रा तदब्बुर और गौर करते हैं इन आयात पे। सबसे पहली बात आयत में अमल की गई कि शुबे वाली हराम और नुकसानदेह चीज़ों से बचना। देखिए अल्लाह ताला का दीन पाकीज़ा है, अल्लाह की ज़ात तैयब है, उसको हर तैयब चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए अगर आप पे कोई चीज़ हराम है, मसलन सूअर का गोश्त हराम है, खून से रोका गया, तो ये गंदी है। गैर अल्लाह के नाम के चढ़ावे चढ़ाकर कुछ चीज़ों को लेना देना, ये क्या है, गंदा है। तो हम साइंस की दलीलें नहीं मानते, हमारा ईमान है कि जो हलाल है वो पाक है, और जो नापाक था गंदा था उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। फिर इससे पता चला कि जिस बात का इल्म नहीं इसका इल्म हासिल कर लेना चाहिए। हर काम में मसनून तरीका अपनाएं, नेकी के काम करने वालों की मदद करें। देखिए बंदा खुद नेकी करे ये बहुत बड़ी नेकी होती है, लेकिन हर एक के पास हालात नहीं होते हैं ना, तो कभी किसी नेकी को सिर्फ ये कहकर दूसरों से शेयर कर दें कि ये काम फलां कर रहा है आप भी चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, आप मस्जिदों में जाते हैं वहाँ मुस्लिम सिस्टर्स होती हैं, थोड़ी सी बात करके कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, दौरे कुरान हो रहा है, क्लास हो रही है, कोई लिंक दे दीजिए, कुछ दे दें। लेकिन मैंने देखा कि अब लोग खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। वो जो घुलने मिलने वाला एक कल्चर था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर इसी तरह कुरान पाक से रहनुमाई क्या है कि हलाल और हराम के मसले में अक्ल को हाकिम ना बनाए। या आपकी अकल बड़ी होशियार है, होशियार है, अकल को पीछे रखिए, शरीयत को सामने ले आइए। मसलन लोग क्या कहते हैं, देखो ना पहले दौर में तो सुअर जो था वो गंद खाता था इसलिए वो हराम था, अब तो सुअर बहुत अच्छे हैं, वो कल तो उसमें बू आती थी अब नहीं आती। इसी तरह गैर ज़बीहा के बारे में लोग कहानियां गढ़ते हैं, सबको डस्टबिन में फेंक दीजिए। अल्लाह की नाफरमानी से बचें, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें, खैर पहुंचाने से ना रोकें, अल्लाह के अहकामात में हिकमत है। सवाल कीजिए, मैं खैर की चाबी और शर का ताला हूँ या शर की चाबी और खैर का ताला हूँ? कुछ लोग लोगों को गंदी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, वो फिल्म देखी, वो गाने सुने, वो फिल्में देखी, वो फैशन देखा, जो भी उनके कहने पे वो काम करेंगे उनको उसके अंदर हिस्सा मिलेगा। तो हमेशा खैर की बात दूसरों के साथ किया करें, गौर व फिक्र की बात मोमिन अहदो पैमान को पूरा करता है। देखिए निकाह एक अहद है, वादा एक अहद है, किसी को उम्मीद दिला दी ये अहद है, किराए पे घर ले लिया किसी का ये अहद है कि मैं किराया दिया करूंगा, आपने कहा कि ये घर ले लो तुम्हें तुम्हें ये फैसिलिटीज मिलेंगी वो देनी होगी। छोटी बड़ी चीज़ों में अहदों को पूरा कीजिए, कमिटमेंट्स को निभाइए। शादी की सूरत में आपने एक अहद किया, आपके शौहर ने एक अहद किया, दोनों को इसको पूरा करना होगा। अल्लाह ताला से हिकमत की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हिकमा। फिर नेकी और परहेजकारी में मदद करनी है, और आलिम को जाहिल पर फजीलत हासिल है, इसलिए आलिम की इज्जत भी करनी है और उनसे फैज भी हासिल करना है। फिर गौर व फिक्र की चंद बातें, चूंकि दीन मुकम्मल है इसलिए दीन के तमाम अहकामात और मसाइल में किताब व सुन्नत पूरी तरह काफ़ी है, यानी आपको मुझे किसी और से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ने हर बात पहुँचा दी हम तक। इल्म से अहले इल्म को आम लोगों पर फजीलत हासिल हो जाती है। दुश्मनी में बदला लेने के लिए भी ज्यादती ना करने का हुक्म है। तो 5 आयतों में शरीयत का एक किस्म का पूरा नटशेल पेश किया गया। अब यहाँ आयत नंबर 6 से ऑनवर्ड कुछ बातें वुजू और तजम्मुम से मुतल्लिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग्सिलू वुजूहकुम वअय्दियकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जुनाबत की हालत में हो तो गुसल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से यानी फारिग होकर आया हो, या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, इसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं डालना चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। अब आप देखिए कि तहारत का जो निज़ाम इस्लाम ने कायम किया है, दूसरे मज़ाहब में उसका तसव्वुर तक नहीं है। तो वुजू हो, गुसल हो या तयम्मुम हो, ये सिर्फ ज़ाहरी नहीं शरई तहारत का भी जरिया है। आप वुजू से बगैर और वुजू के साथ अपनी कैफियत में फ़र्क महसूस करती हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हदीस में आता है कि मोमिन वुजू की हिफाजत करता है, यानी वुजू ख़त्म हुआ ना तो दोबारा कर लीजिए, जब भी वुजू टूटा दोबारा कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप हमेशा फिर गुनाहों से रुकेंगे, नहीं वुजू है, गीबत करेंगे, नहीं नहीं वुजू ना टूट जाए। अच्छी बात है, कोई समझता है ना ये बात तो समझ लें, गीबत से वुजू टूट जाता है कि नहीं। कुछ खवातीन कहती हैं सर से दुपट्टा उतर जाए तो क्या वुजू टूट जाता है? अगर वो ये समझती हैं और सर पे दुपट्टा रखती हैं कि मैं वुजू से आपका क्या बिगड़ता है, समझ गए, तो वुजू से रहना, इसी तरह बाकी भी चीज़ें जो है ये पाकिजगी की हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम, तुम पर अल्लाह ताला की जो नेमतें नाजिल हुई हैं इन्हें याद रखो, और इसकी सेहत को भी जिसका तुमसे मुआहदा हुआ है, जबकि तुमने कहा हमने सुना और माना, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ते और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत यानी दुश्मनी तुम्हें खिलाफ अदल बात पर आमादा ना कर दे, अदल किया करो जो परहेजगारी के ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम। अल्लाह ताला का वादा है जो ईमान लाए और नेक काम करें, इनके लिए वसी मगफरत और बहुत बड़ा अजर और सवाब है। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारे अहकाम को झुटलाया, वो दोस्त ही हैं। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो, जबकि एक कौम ने तुम पर हाथ उठाया यानी दस्त दराजी करना चाही, तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया। और अल्लाह ताला से डरते रहो, और मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कातिलाना हमले हुए थे, उसी की तरफ इशारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर कि जिस पे आज हम बैठकर बात करते हैं तो हमारी आंखें नहीं भर जाती। अल्लाह के नबी को देखना कितनी बड़ी हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह के नबी का साथ मिल जाए। सहाबा किराम की नबी से मोहब्बत देखिए, लेकिन उनके दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको आप एक आंख नहीं भाते थे, जो आपकी जान लेना चाहते थे। ऐसी ही बातों को पढ़ते वक्त तो फिर दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह तो हमारी पूरी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दिफा के लिए गुजार दे। हम इस शरीयत को जो आज इन किताबों में पढ़ी, आप ये किताबों में पढ़ रहे हैं, अगर ये हमारे 2 बिलियन मुसलमानों के वजूद पे आ जाए और 100+ कितने मुसलमान मुल्क हैं चले, उन्हीं में शरीयत आ जाए, तो आप देखिए दुनिया इसकी बहारें ढूंढे। अब लिख के रख लीजिए, अगर उम्मते मुस्लिमा अपने आप को नबी के पूरे दीन पर जोड़ ले, शरीयत नाफिज करे, जैसे आज वेस्टर्न कंट्रीज में लोग भाग भाग के जाते हैं ना, उस मुल्क में जाओ उधर जाओ, लोग उन मुसलमान मुल्कों में आएंगे, और आज भी इसका ट्रेंड शुरू हो गया है। इधर फिर भी अमन चैन है, इधर सुकून है मुसलमानों में, चलिए अल्लाह रसूल की बात तो होती है ना, लेकिन पूरी शरीयत नाफिज हो जाए क्या कहने है। और यहाँ ये भी नोट कर लीजिएगा अगली आयत से, बल्कि आपको पता भी चलने वाला है अभी, कि ये शरीयत जो हमें मिली है ना, ये बनी इसराइल को भी मिली थी। उसकी दलील देखिए, वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया, और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और इनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहदो पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह राज से भटक गया। उंगलियों पे गिन लीजिए, ये सारी चीज़ें उनको भी थी मिली, हमें भी मिली। कौन सी नमाज ज़कात आज आपको यहूद और नसारा में नमाज और ज़कात दिखती है? किधर गई? ख्वाहिशात की नज़र चली गई। लिख लें, शरीयत शहवत की भेंट चढ़ जाती है। आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमों को देखकर अगर कोई इस्लामी शरीयत लिखे तो उसमें भी नमाज कोई नहीं है, सिर्फ जुम्मा ही रह गया कोई एक नमाज दिन की। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, लेकिन आम मुल्कों में, इवन पाकिस्तान और बाकी मुल्कों का मैं क्या नाम लूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे मुल्कों के 90% लोग 5 नमाजें नहीं पढ़ते। जुमे की नमाज पढ़ने वाले अभी होंगे कोई 80%। तो शरीयत इंसानों को देख कर लिखी जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अब इस आयत को पढ़कर आपका दिल मान रहा है कि अच्छा, यहूद और नसारा को भी कहा गया था नमाजें पढ़ो, ज़कात दो, रसूलों को मानो, कर्ज़े हसना दो। आज हमें तो लगता है हाय कितने मज़े में वो, उनको तो कोई पाबंदी ही नहीं, वो तो पहने ना पहने कपड़े खैर है, उनको भी लिबास और हिजाब की पाबंदियाँ थी। तो ये जो यहूद और नसारा, ये दो बिगड़े हुए गिरोहों के नाम है, अपने दौर में ये मुसलमान थे। जैसे अगर आज कोई किताब कुरान के बाद आती तो मुसलमान जो इस वक्त के, उनका हाल जो लिखा जाना था अल्लाह की बना, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। तो अल्लाह ताला हमें अपने दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसी सारी चीज़ों के बाद फरमाया इनका कसूर क्या था। फबी मनकदिह मी साका हम ला अन्ना हम वजालना कुलूब हम कासिया, फिर इनकी सेहत शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए कि वो कलाम को इसकी जगह से बदल डालते हैं और जो कुछ नसीहत इन्हें की गई थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। इनकी एक नए ख्यानत पर आपको इत्तला जरूर मिलती रहेगी, हाँ थोड़े से ऐसे नहीं भी, बस तू इन्हें माफ़ करता रहे और इनकी हरकत से चश्म पोशी करते रहो, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या पता चला? आइए देखिए तदब्बुर और अमल। चूंकि वुजू और गुसल और तहारत की बातें थी तो हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है, मसनून तरीके से वुजू और तयमुम करना है और दूसरों को सिखाना है। या फिर दर्द के साथ बोलूंगी कि हमारा अक्सर लोगों का वुजू भी मसनून नहीं है, तो आपको जो मतरूक सुन्नतें दी जा रही हैं पारे कैंट पे, उसको ज़रूर गौर से सुना करें और उस पे पर अमल करेंगे। फिर इसी तरह जिन नेमतों पर शुक्र करने से गाफिल हैं इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, कर्ज़े हसना देना है और दिलों को नरम करने वाले आमाल लेने हैं। इन आयत में चूंकि दिलों की सख्ती की बात हुई है, कासियतन कुलूब, तो यहाँ ये बात भी फ़ायदेमंद होगी कि दिल कब सख्त होता है, जब लोग दीन के अंदर तब्दीलियां करते हैं। हसन बसरी एक बहुत ही बड़े मुफस्सिर भी गुजरे और सलफ सालेहीन में थे, वो कहते हैं कि 6 चीज़ें दिल में सख्ती पैदा करती हैं। लिख लीजिए लिखना चाहें तो, इल्म हासिल करना मगर अमल ना करना, इखलास के बगैर इबादत करते रहना, अल्लाह ताला का रिस्क खाना लेकिन उसका शुक्र अदा ना करना, तकदीर से नाराज रहना, मुर्दों को दफनाना और इबरत न लेना, और तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहना। आज आप और मैं देख सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अफराद होने के नाते हमारे दिल तो सख्त नहीं हो चुके, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे दिल की सख्ती से। फिर इसके बाद कुरानी रहनुमाई देखते हैं। इस्लाम एक आसान दीन है, अल्लाह के साथ किए हुए अहद को याद रखना है, और ये कभी भी नहीं कहना कि दीन बड़ा मुश्किल है। नेमतों की हिफाजत के लिए शुक्र अदा करें, अपने मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, अल्लाह आपकी टेक केयर करेगा। पानी और मिट्टी के जरिए ज़ाहरी तहारत, जबकि खालिस तौबा के जरिए बातनी तहारत की तकमील है। याद रखिए कि तौबा के पानी के साथ गुनाहों वाले दिल को धो लें तो अल्लाह ताला आपको एक नई जिंदगी शुरू करने की तौफीक देगा। गौर व फिक्र की चंद बातें, वुजू करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं, इसको महसूस कीजिए। आज इसके बाद जो भी वुजू करेंगे ना, हाथों के गुनाह, नाक के गुनाह, चेहरे के गुनाह, ये सब मिटेंगे। हदीस से हमें ये बात पता चलती है। तो जब गुनाह मिट गए तो नेमत कामिल भी हुई और पूरी हो गई। मोमिन हक और इंसाफ को कायम करने वाला होता है, चाहे उसकी जद अपने किसी प्यारे पे पड़े। साथ सच का दीजिए, हक का दीजिए। अदल और इंसाफ करने वाले का अल्लाह के नज़दीक अजीम मर्तबा है, इसलिए हर हाल में अदल का साथ दीजिए। बंदा अपने ईमान के मुताबिक ही अल्लाह ताला पर भरोसा करता है। अपना ईमान चेक करने की ज़रूरत है कि मेरा ईमान कैसा है। पीछे बनी इसराइल की कहानी, अब आगे नसारा की कहानी, यानी इस पूरी सूरत में आपको यहूद नसारा मुसलमान, यहूद नसारा मुसलमान, अगर आप इस तेज़ी से तर्जमा समझ भी रहे हैं ना जो खुल के सामने आ रहा है, तो आप देखेंगे एक बात यहूद की, दूसरी आयत नसारा की, तीसरी मुसलमानों की, रिलेट किया गया इसमें, क्योंकि ये आखिरी सूरत है। अल्लाह ने उम्मत मुसलिमा को पिछली दोनों कौमों का हाल बताया। सूरत बकरा में बनी इसराइल के किस्से थे, सूरत आले इमरान में नसारा के थे, सूरत निसा में मदीना के यहूद की तरफ से फैलाई हुई कहानियां और मदीना के यहूद, और सूरत मायदा में अब इस सारे मजमून में सबको डाल दिया। तरतीब समझ आ रही है? इसके आगे बिल्कुल ही अंदाज अगली दो सूरतों का बदल जाना है। तो कुरान से दोस्ती करें। अल्लाह जानता है कुरान खोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उर्दू की किताब है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, ये मेरा अपना, यानी बल्कि मुझे देख के पढ़ना मुश्किल लगता है। कोई पढ़ूंगी तो गलतियां करती हूँ, क्योंकि कुरान के साथ दिन रात जब आपका गुजरता है, आप सुबह और शाम रहते हैं, तो आपकी मिसाल कैसी है, जैसे आप जद्दा शहर में पुराने हैं, आपको एक एक गली रस्ते का पता है जहाँ आप गुजरते हैं। पाकिस्तान में रहे पले बड़े, वहाँ का हमें पता है। कोई नया आता है, मैं आपके पास नहीं हूँ, मुझे हो सकता है ना पता हो, मैं जिस गली से गुजर गई वो तो पता है, बाकी नहीं पता। तो नया नया कुरान सीखने वाला नया होता है किसी शहर में, पूछ पूछ के, ये गली किधर जाती, वो किधर, वो किधर। तो जब आपका इसके साथ दिन रात गुजरता है, तो वो आपको अपनी किताब लगती है। दुआ करें हमारा ओढ़ना बिछोना अल्लाह इस कुरान को बना दे, और अपने प्यारे नबी की हदीस को